हेलो गाइस,
व्हाट इज अप।
मेरा नाम है रोहित
और मैं हूं आयुष।
WWE हो या फिर ऑल इलीट रेसलिंग,
ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट,
रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला,
क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा।
वेलकम गाइज आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में, और ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है भाई। रेसलमेनिया है, WWE का साल का सबसे बड़ा शो, और अगला शो भी वही होने वाला है। तो इस एपिसोड में आपको सब कुछ, लिटरली A to Z सारी बातें रेसलमेनिया के बारे में पता चलने वाली है। इवन शॉकर्स क्या है, सरप्राइजेस क्या है, क्या हाइप है रेसलमेनिया की, और जैसा आयुष उसको नाम दिया जा रहा है, क्या ये ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया एवर है, ये भी आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। तो भाई पूरा इसको एंड तक सुनना, हमेशा की तरह अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना। आयुष, सबसे पहला आपसे ही सवाल, क्या ये है ग्रेटेस्ट या WWE जैसे हर बार बस एक स्पेशल कोई लाइन जोड़ देती है सिर्फ उसके लिए इसको नाम दे रहे हैं वाला?
भाई अगर ऐसे मैं बता देता ना, मतलब फटाफट से एक सेकंड के अंदर कि ग्रेटेस्ट है कि नहीं, तो फिर लोग भी यहाँ कहेंगे भाई किस हिसाब से बोल रहा तू। तो आई थिंक जो इसका बेस्ट वे रहेगा ना बताने का, वो रहेगा कि हम सारे मैचेस एक बार डिस्कस करें। काफ़ी सारे मैचेस, ऑलमोस्ट 10 मैच ऑफिशियल हो चुके हैं, एक एक करके उसके ऊपर आएँ। और मैं चाहता हूँ कि मैचेस पे जाएँ, उससे पहले लोगों को भाई बोल दूँ कि गाइज आप लोगों ने कमाल कर दिया हमारी 3000 वाली स्टोरी पूरी करके, अब हमारी नई स्टोरी है 4000 रेटिंग की। तो अगर आपने रेट नहीं करा इसलिए खड़ा हूँ, स्पॉटिफाई पे आप सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, रेट कर दो जाके 4000 अब हम करना चाहते हैं क्रॉस, लेट्स डू इट। लेकिन रोहित, ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम सारे मैचेस हम बात करनी पड़ेगी, बैठा के रखूँगा आज मैं रोहित को काफ़ी देर यहाँ। लेकिन उससे पहले कुछ शॉक्स, सरप्राइजेज और बड़ी मोमेंट्स चाहिए एक रेसलमेनिया को अच्छा बनाने के लिए। सिर्फ मैचेस जो ऑफिशियली ऑलरेडी अनाउंसड हैं उससे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली बात तो नहीं होगी। तो दो चीज़ें, दो नाम मैं लेके बस छोड़ देता हूँ जो कर सकते हैं उस चीज़ को पूरा, मे बी CM Punk, जॉन सीना।
देखो यहाँ पे अगर इन दो नामों की बात हो रही तो ऑब्वियसली हम इनकी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं रेसलमेनिया में, और पहले CM Punk की करो या पहले जॉन सीना की करते हैं। तो आयुष, मेरे को तो जॉन सीना के बारे में ये लगता है, जैसा मैंने उनको इंटरव्यूज़ के अंदर देखा है, इधर उधर वो आ रहे हैं, भटक रहे हैं भाई, कह रहे हैं मैं रेसलमेनिया वाले दिन फ्री हूँ, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जॉन सीना रेसलमेनिया में है। बट ये मैं नहीं कह सकता, ऑब्वियसली मैच तो शायद ही यहाँ से कोई नज़र आ रहा है, कोई स्पेशल अपीयरेंस हम उनकी एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी तो ये भी कह रहे थे यार रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का मैच करवा, तो अब तो वो चीज़ ऑब्वियसली नहीं हो रही, लेकिन जॉन सीना होंगे जरूर रेसलमेनिया में, ये तो लगता है मुझे। और CM Punk का आयुष, ये थोड़ा सा ये ज्यादा शायद हो सकता है इंपॉर्टेंट फील कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रू मैकइंटायर के साथ जो उनकी कहानी चल रही है।
मतलब CM Punk वाली चीज मैं ये नहीं बोलूंगा कि शॉक होगी, बिकॉज ऑलरेडी अनाउंसड है CM Punk आ रहे हैं March 25th को, और फिर उसके बाद 1 अप्रैल को मंडे नाइट रॉ में, तो उनका रोल कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंसड हो। लेकिन रोहित, ये आइडिया कैसा रहेगा कि CM Punk होस्ट बने रेसलमेनिया के, और वो दोनों नाइट पे अपने साथ कोई एक सरप्राइज पार्टनर लेके आए जो उनके साथ होस्ट बन सकता है, तो बेसिकली डबल होस्ट, और एक हो सकते हैं जॉन सीना, और मे भी दूसरा नाम हो सकता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन।
ये आयुष और स्टोन कोल्ड का नाम लेने की जो नेवर एंडिंग लव स्टोरी है, लग रहा है ऐसे ही चल गया हमारे एपिसोड में, क्योंकि लेकिन हाँ भाई लॉजिक ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्टोन कोल्ड ऑब्वियसली रॉक और स्टोन कोल्ड अगर सेम शो पर है तो बहुत मजे की बात हो जाएगी। जॉन सीना और CM Punk का एक साथ होस्ट होना, वो भी बहुत मजे की बात हो जाएगी। एंड यस, CM Punk क्या पता स्पेशल गेस्ट रेफरी भी हो सकते हैं, क्योंकि आयुष ये वाला जो एपिसोड है वो अभी 25 मार्च को जो रॉक का एपिसोड है उससे पहले रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या पता जब हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में रेसलमेनिया कहीं भी बात करें तो हम ये बता रहे हो कि CM Punk तो भाई ये हो गए वो हो गए, तो उसके ऊपर तो खैर हमको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अगर WWE उनको बुक कर रही है तो शायद उसके पीछे एक रीज़न होगा, तभी WWE उनको लेके आ रही है, और कुछ ऐसे नामों को लाने की वजह से रेसलमेनिया स्पेशल बनती है। बट सबसे बड़ा नाम और शायद सबसे कम चांस जिसका है, ये दिल तोड़ देगा बोलना भी चाहिए नहीं, लेकिन ब्रॉक लेसनर की मैं बात कर रहा हूँ यार। फिर से घुमा फिरा की बात वही आ जाती है कि यार ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में नहीं है जहाँ पे गुंतर से लड़ सकते थे, या क्या पता है भी सरप्राइज बना के कुछ।
भाई मैं इतना ही बोलूँगा कि गुंतर के ऊपर एक बहुत बड़ा एपिसोड आने वाला है, जो प्रॉब्ली आई थिंक रोहित नेक्स्ट एपिसोड ही होगा हमारा, जहाँ में हमने बहुत डिटेल में बात करी है गुंथर के बारे में और ब्रॉक के बारे में कि क्या वहाँ है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। लेकिन आई थिंक कि अगर पूरी रेसलमेनिया में अगर कोई बड़ी चीज़ मिस हुई है इस बार, जो हो सकती थी, जो कि प्लान्स में थी ओरिजिनली, वो है ब्रॉक लेसनर, और अभी तक हम कह रहे हैं मिस हो रही है, लेकिन क्या एज अ सरप्राइज़ वो वापस आएंगे, मे भी हो सकता है उस शो को बड़ा बनाने के लिए। तो रोहित मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा ब्रॉक के बारे में, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड वहाँ पर काफ़ी बात हुई है। लेकिन अगर वो एक सरप्राइज़ की हम बात करें जो लाया जा सकता है, जो कि हाँ एक बड़ी शॉकिंग मोमेंट, वायरल मोमेंट बन सकती है, कोई अच्छी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आई थिंक ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो होगा। और मैं सीधा ही बोलूँगा कि मैं जानना चाहता हूँ तेरा ओपिनियन क्या है फॉर ब्रॉक लेसनर, बट उसके बाद हम सीधा स्टार्ट करना चाहते हैं वॉकिंग क्लाउन इमोजी वाले मैच से। मैं चाहूँगा कि रोहित ही उसका स्टार्ट करें।
यार ब्रॉक लेसनर के ऊपर अगेन आई थिंक जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें हमने और डिटेल में बात करी है, एंड आपको स्पॉइलर देता हूँ वो हमने एपिसोड पहले रिकॉर्ड कर लिया है तो उसमें आई थिंक और डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना आप। ये वॉकिंग क्लाउन वाली इमोजी बोल के सेथ रॉलिंस, भाई सेथ रॉलिंस आपके फेवरेट ही हैं अगर हम आपको याद दिला दें तो, लेकिन शायद रॉक की बातों में आयुष थोड़ा सा ज़्यादा रंग गए हैं। और ये बात हो रही है ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच की, अगर चलो ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया है या नहीं उस पॉइंट की तरफ ही बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसी बात के ऊपर आना चाहूँगा क्या सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर के मैच की बिल्ड है। ये शायद कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है जितनी हाइप होनी चाहिए उससे ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि इस मैच को हाइप की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे मैच की हाइप तो कर ही नहीं रहे, सेथ रॉलिंस तो उधर बिजी है, लेकिन उसी चीज़ को स्टोरी लाइन में बना के जो इन्होंने चीज़ आगे कंटिन्यू की है, मेरे को आयुष सही में ऐसा नहीं लग रहा है कि अब सेथ और ड्रू के बीच कुछ भी होने की जरूरत है। सीधा अगर कल रेसलमेनिया होगी तो कल भी ये मैच कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दो चार रॉ एपिसोड रह भी गए तो कुछ रहने वाला, क्योंकि मोर देन इनफ मामला हो चुका है। सेथ की अलग कहानी है, ड्रू मैकइंटायर की स्टोरी भी फिनिश होनी है, तो मेरे को मैं तो सेटिस्फाइड ही हूँ इससे जो भी चल रहा है इनके बीच।
आई थिंक मुझे अग्री ही करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज एक क्लैरिटी और मोर दे देंगे, हम प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे हैं यहाँ के कौन जीतने वाला है, दिस इज नॉट रेसलमेनिया प्रिडिक्शंस, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कैसी हाइप है, क्या WWE हर मैच पे सही से काम कर रही है टू मेक इट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और एंड में कंक्लूजन निकालेंगे पॉडकास्ट के। तो जहाँ तक हाइप का सवाल है, आई डोंट थिंक कि कुछ करना बाकी है, बिल्कुल मैं अग्री करूँगा उस बात से। ड्रू मैकइंटायर भाई आई डोंट नो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये प्लान तो था, लेकिन जिस तरीके से वो आया है, जिस तरीके से रिजल्ट किया ड्रू का नया कैरेक्टर स्क्रीन पे, वो कुछ नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं उस चीज़ को। और सेथ रॉलिंस ने जबकि कुछ खास उतना किया नहीं स्टोरी को बिल्ड करने के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्योंकि ब्लड लाइन वाली चीज़ में इन्वॉल्व है, सेथ रॉलिंस पर बहुत सारी लाइमलाइट है। प्रिडिक्शंस की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन रोहित मैं इतना बोलूँगा कि ये नाइट 2 पे हो रहा है, संडे को हो रहा है, तो हम आएंगे जबकि अभी टैग टीम मैच में, लेकिन क्या डिपेंड करता है, मैटर करती है चीज़ कि सेथ रॉलिंस नाइट 1 पे पिन हो रहे हैं या फिर नहीं, बिकॉज उससे पहले नहीं उसके बाद वो अपना टाइटल करने वाले हैं डिफेंड।
यहाँ पे ऑब्वियसली वो जो टैग टीम वाला मैच होगा उसमें क्या कुछ हो रहा है वो इस मैच में रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि भले बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे कौन सी ब्लड लाइन है, यहाँ पे तो ड्रू मैकइंटायर है, लेकिन ड्रू मैकइंटायर ऑलरेडी रॉक के बारे में बोलते हैं कि वो बिगर पिक्चर की तरफ जब देखते हैं तो उनको रॉक सारे सिचुएशन में सही लगता है, तो ऑब्वियसली मैटर करेगा ये। और आप कह सकते हो जो ये तीन मैच होने वाले, रोमन और कोडी वाला और टैग टीम मैच, रॉक वाला और ये वाला, इसके जो रिजल्ट है वो आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं बहुत अच्छी तरीके से, और शायद इस पॉडकास्टिंग के एंडिंग में आपको जो है चीज़ों का आइडिया मिलेगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। बट मैं तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच जो अभी तक हुआ उससे सेटिस्फाइड हूँ, एंड नेक्स्ट मैच भी और है आयुष यहाँ पे एल ए नाइट और एजे स्टाइल्स का। अब तक मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन कि ये क्या कर रहे हैं एल ए नाइट और एजे स्टाइल्स, मैं तो एल ए नाइट को चाह रहा था कि वो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीते, एजे स्टाइल्स को भी WWE किसी अदर वे में बुक कर सकती थी कोई बड़ा सुपरस्टार लाके, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने बड़े बड़े मैचेस दिए इंक्लूडिंग अंडरटेकर का लास्ट रेसलमेनिया मैच, उनका करियर का WWE का लास्ट मैच। लेकिन अभी मैंने ट्विटर पर देखा ये एजे स्टाइल्स बोलते हैं मैं तो स्मैकडाउन में नहीं आ रहा, मैं तो सीधा रेसलमेनिया में आऊँगा, और एल ए नाइट बोलते हैं मुझे तो जहाँ दिख गया वहाँ मैं तुझे पकड़ के मारूंगा। तो वो जो इन्वेजन हुआ था एक बार ट्रिपल एच ने जो रैंडी ओर्टन के घर पे आके मारा था, वो चीज़ अगर WWE कर रही है यहाँ पे तो भाई नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट लेवल का मज़ा है इसका, और बिना कोई चैंपियनशिप इन्वॉल्व हुए भी जितना पर्सनल मैटर को बना देंगे मज़ा आएगा इसको देखने में।
आई थिंक मतलब यहाँ पे ना ये मैच को बिल्ड ज़रूर दी जा रही है, कुछ ना कुछ करा जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद नहीं है कि इसको कुछ ज़्यादा स्ट्रेच किया जाएगा, क्योंकि ये मैच हो चुका है ऑफिशियल, अब रेसलमेनिया आने वाली है, इसमें स्टोरी डालना ज़बरदस्ती की अगर दिखाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि WWE दिखेगा कि ऐसे मैचेस पे फोकस कर रही है जो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं फिलर्स बन जाएंगे रेसलमेनिया के कार्ड में, बिकॉज और बहुत कुछ और बहुत सारी ज़्यादा एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस के साथ हो रहा है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड ज़रूर हूँ इस मैच को देखने के लिए, प्रिडिक्शंस एक बार फिर से नहीं है, लेकिन रोहित ये तो है कि हम LA Knight की जब बात कर रहे थे लास्ट ईयर भी कि मनी इन द बैंक नहीं जीते, फिर रॉयल रंबल में भी नाम आया कि मे बी शायद LA Knight, क्या ऐसा इस पॉइंट पर लग रहा है कि LA Knight की जो हाइप है वो कम हो गई, या फिर WWE ने जानबूझ के उस पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया है कि उनका टाइम आएगा पर अभी कुछ टाइम बाद?
यार मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाइप कम हुई है, कुल मिला के WWE में जो स्पॉटलाइट होती है वो एक पॉइंट पर एक ही इंसान पर रह सकती है, इसीलिए उसका नाम स्पॉटलाइट होता है। तो फिलहाल वो शिफ्ट हो गई है थोड़ा सा रॉक वाले ड्रामा की तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि एलन हैट ने कहीं पर भी कोई कमी करी है। और जैसा आयुष ने बोला, ये मैच ऐसा है जो कि होना नहीं था कभी भी, लेकिन इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेसलमेनिया में दोनों सुपरस्टार्स को एक अच्छा सही सा अपोनेंट चाहिए, और WWE ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे कि वो दोनों को रेसलमेनिया में ना बुक करे। तो मेनली उस इस मैच का यही पर्पस है, लेकिन अगर इसमें एक स्टोरी बढ़िया आ जाती है, जैसे अभी ये घर पर इन्वेड करने वाला एंगल, तो शायद इसमें जो तड़का है वो अच्छा वाला लग सकता है। बट आयुष, एक एक कार्ड पर एक ऐसा मैच भी जिसमें ऑलरेडी इतना तड़का लग गया हुआ है कि अब यहाँ पे कुछ करने के लिए कहने के लिए बचा नहीं, क्योंकि स्टोरी की भी जरूरत नहीं है। जिमी और जे उसो, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, और वो जो मी वर्सेस मी वाली लाइन बोली ना भाई जे उसो ने, मैं कह सकता हूँ पूरी पूरे मैच की फील आ गई कि यस, ये है ब्रदर वर्सेस ब्रदर का, ट्विन वर्सेस ट्विन का एक असली वाला मैच।
भाई गूज़बम्स, ये चीज लास्ट ईयर की रेसलमेनिया से जैसे लीड करती है इस बार की रेसलमेनिया में, जहाँ पे उसोज सेम पेज पे थे पर टाइटल्स हारे, और कहाँ आ गई है रोड जहाँ पे दोनों अलग पेज पे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सोच के इतना बढ़िया लगता है, और जबकि काफ़ी टाइम से इनकी ब्लड लाइन की जो स्टोर लाइन है, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ अगर हम ब्लड लाइन को देखें रॉक को भूल जाएं, तो इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है स्टोरी के अंदर। लेकिन जिमी और जे, जैसा मैं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर रेसलमेनिया और उससे पीछे हिस्ट्री इतनी है, डे वन, और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, डे वन कम, कोई कंपैरिजन, कोई स्टोरी इससे बड़ी हो नहीं सकती। तो ऑटोमेटिकली इस मैच की जो इम्पोर्टेंस है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और रोहित, जबकि हमने इतने टाइम से जे को मेन इवेंट में देखा है और बहुत सारा सक्सेस देखा है, जिमी उसो को जो इस मैच को जीतने की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा है, बिकॉज अगर इस पॉइंट पर जे ने हरा दिया जिमी को, तो ऑटोमेटिकली एक क्लियर विनर आ गया कि एक ही बंदा, एक ही उसो है जो मेन इवेंट कर सकता है। वो एक चीज़ है जो आई थिंक अभी और खुरेदी जाएगी आने वाले वीक्स में, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग बनाती है इस चीज़ को कि जिमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है विक्ट्री।
ये मैच ऐसा है कि सबसे पहली बात इसमें, जैसे आयुष ने बोला, विक्ट्री मैटर करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इन अ वे विक्ट्री नहीं भी मैटर करती है, क्योंकि ये मैच ही अपने आप में इतना बड़ा है कि कोई भी, मेरे को नहीं लगता कोई भी बंदा, जैसे यूजुअली काफ़ी सारे ऐसे मैचेस होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो रोमन और कोडी का मैच, उस मैच में सबसे ज़्यादा नज़र इसी पर है कि जीतेगा कौन, लेकिन इस मैच में इतनी नज़र है नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि ये स्टोरी कैसे टेल करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। और जैसा आयुष ने बोला, जिमी उसो एक तरीके से देखा जाए तो अगर वो नहीं जीते ना, तो उनके साथ ये डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता भी कि बहुत सारे लोगों को जे लग रहा है कि वही जीतेंगे, लेकिन मेरे को ऐसा शायद नहीं लग रहा अभी इस पॉइंट पे। ऑब्वियसली आगे प्रेडिक्शन जब आएगी तब और इसके बारे में बात करेंगे, बट यस, ये एक ऐसा मैच है रेसलमेनिया 40 का जिसमें शायद लोग आगे जाके ये भी बोल सकते हैं जब रेसलमेनिया 50 होगी, और शायद तब भी हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होंगे, कि यार रेसलमेनिया 40 वही है ना जिसमें ब्रदर वर्सेस ब्रदर वाला मैच हुआ था, तो इतनी इंपॉर्टेंस ये रखता है इस कार्ड के ऊपर।
एक चीज़ मैं और भी बोलूंगा कि ये जैसे लास्ट ईयर जब मैच कार्ड था हमारे सामने रेसलमेनिया का, तो किसी ने नहीं सोचा था कि हम एक साल बाद मैच ऑफ द ईयर को वोट कर रहे होंगे, टैग टीम मैच सैमी एंड केविन वर्सेस उसोज। अभी ये वो मैच इस साल ऐसा नहीं लग रहा कि क्लियर, लेकिन रोहित डेफिनेटली एक बड़ा कंटेंडर बनेगा ये दोनों नाइट कम्बाइंड रेसलमेनिया 40 के मैच ऑफ द नाइट के लिए। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई गलती होने वाली है, कुछ एक भी कमी छोड़ने वाले हैं दोनों, बेस्ट पॉसिबल रेसलिंग मैच देने के।
कुल मिला के मैं तो इस कन्वर्सेशन को ऐसे ही एंड करना चाहूंगा, जब दोनों भाइयों को ये पता है कि इस भाई को खाने में कितना नमक चाहिए होता है, एक को 1 ग्राम कम, एक को 2 ग्राम ज्यादा, तो इनकी इन रिंग केमिस्ट्री देखने में कितना मजा आएगा। और मैं सरप्राइज हूँ कि अब तक इनका सिंगल्स मैच हुआ नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली टैग टीम में ही थे, लेकिन अब हो रहा है तो सीधा रेसलमेनिया में जाके, तो भाई WWE को तो बहुत मस्त वाली रेसिपी मिली है। ज़्यादा शायद हमने इसके बारे में बात कर ली क्योंकि ऑलरेडी है ही इतना बढ़िया ये। नेक्स्ट है गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, और ये वैसे मैं बोलना चाहूँगा कि शायद हमारा जो अगला एपिसोड है उसमें इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं इसके ऊपर। सैमी ज़ेन की स्टोरी चल रही है और गुंथर अनडिफीटेड है इतने टाइम से, तो बिगर फील तो है इस मैच की,
बहुत बड़ी फील है। आई थिंक कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन इज गुंथर वर्सेज ब्रॉक लेसनर, पर उसके बारे में क्या ही बोलें, जब वो जेन्युइन ऑफिशियल रीजंस की वजह से हो नहीं सकता, तो हम ये नहीं कह सकते कि WWE क्यों नहीं कर रही उस मैच को। सैमी ज़ेन के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे वो वैसे ही बेवकूफ़ है भाई, क्योंकि हम इसमें सैमी को क्या ब्लेम करेंगे, ब्रॉक की जगह आ गया सैमी। तो आई थिंक ये मैच तो डिलीवर करेगा अपने आप में, प्रॉब्ली एक और कंटेंडर बन सकता है मैच ऑफ द पेपर व्यू या फिर PL ही नहीं तो एटलीस्ट मैच ऑफ द नाइट का कंटेंडर। और बहुत सारी चीज़ें हमने पॉडकास्ट में बात करी हैं जो आने वाले, जैसा कि रोहित ने कहा, लेकिन एक पॉइंट मैं उठाना चाहूँगा जो सेथ वाले मैच में भी कहीं ना कहीं लागू होता है, और वो है डेमियन प्रीस्ट के कैश इन का। बिकॉज अब हम बोल रहे हैं कि रेसलमेनिया में बहुत सारी शॉक मोमेंट्स होंगी, कुछ ऐसा होगा, हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी लेवल तो नहीं बिकॉज दिस इज डेमियन प्रीस्ट, लेकिन रोहित है पूरी रेसलमेनिया में कहां भाई, कब कहां है वो टाइम, मुझे कोई बताएगा कि कब होगा कैशन?
ये जिस टाइम पे हमने इस डेविन प्रीस्ट के कैशन की आपने बात उठाई, आई थिंक वही वो टाइम है जिसको डेविन प्रीस्ट को भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस बात को इग्नोर कर देंगे, यार डेविन प्रीस्ट ही तो है, क्या मिड कार्ड में क्यों करेगा, लेकिन उस मिड कार्ड की जरा फील तो देखो भाई, कई कई मौकों पर वो जो सेस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है उससे ऊपर नजर आती है, जैसे सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, तो आई थिंक बहुत बढ़िया जगह है ये। और अगर डेविन प्रीस्ट को कोई इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दे इस चीज़ को कि हमने क्या बात की है, तो वो कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि उन्होंने डेविन प्रीस्ट ने कैश इन किया गुंतर के ऊपर और वो जीत गए, क्योंकि गुंदर का रेन का टूटने का जो तरीका होगा वो भी शायद स्पेशल बनाएगा, और डेविन प्रीस्ट जिस तरीके से आगे उसको कैरी करेंगे वो अच्छा हो सकता है, तो ये भी एक शॉकर की तरह काम करेगा। बट ये तो सिर्फ हमारी बात है, ऑब्वियसली ट्रिपल एच चीजों को जैसे देखते हैं उसी तरीके से चीजें प्रोग्रेस करेंगी, बट यस एक शॉकर या सरप्राइजिंग मोमेंट हो सकता है। वुमेन्स चैंपियनशिप मैच,
ये मुझे बढ़िया लगा कि रोहित ने बोला कि गुंथर का जो लॉस का तरीका, अगर वो कैश इन से होता तो गुंथर को प्रिजर्व बचाया जा सकता है बहुत उस तरीके से, कि भाई हारा तो सही इतने दिनों बाद, पर कैसे ही हारा कैश इन से, तो वो एक अच्छा ट्रांजिशन हो सकता है गुंथर के लिए। बट वी शुड मूव ऑन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बेली वर्सेस इयो स्काई, भाई बेली को टाइटल दो, ख़त्म करो। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे, मतलब जबकि रोहित मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दूसरा विमेंस मैच रेसलिंग वाइज बेटर हो सकता है, बट इसकी स्टोरी है
यार। एक मैं बिल्कुल जेन्युइन अपना ओपिनियन दूं, ये मैंने अपनी वीडियोस में ही बोला है कि लोगों को जितना इसके बारे में केयर करना चाहिए, जो स्टोरी मिल रही है उसको, उतना लोग इसके बारे में केयर नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं लोगों का ये जो एटीट्यूड है इस मैच की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा सबका जो बिल्कुल डीप से देख रहे चीज़ों को, उनको तो ऑब्वियसली मज़ा आ रहा है, लेकिन जैसे फैंस डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं कई बार चीज़ें शो पर बड़ी हैं, जैसे रॉक रोमन रेंज शो पर हैं तो लोग इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, वो ट्रीटमेंट इस मैच के साथ सही नहीं हो रही, और इस वजह से शायद इस मैच के बारे में उतनी बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। बेली ने पूरे साल कुछ नहीं किया, डैमेज कंट्रोल की पूरी हेल्प करी, सारे के सारे लोग उनके ऊपर टर्न कर गए, कायरी सेन आई जिसके पुराने नाते थे बेली के साथ, तो ये पूरी स्टोरी चल रही है। और अगर बेली जो पूरे पिछले साल हारी है, इस साल वो रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया में भी इस टाइटल को जीत रही, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं रही है, तो ये अपने आप में है ग्रेटेस्ट इस चीज की बात करें, लेकिन लोग इसको वैसे ले नहीं रहे, मेरा ये कंप्लेन रहेगी इस समय।
भाई डकोटा काय को तो शर्म आनी चाहिए कि मतलब एक तरफ, अगले हफ्ते दूसरी तरफ, और अब सिचुएशन ऐसी बेली के लिए क्रिएट कर दी है कि भाई 4-on-1 सिचुएशन है, अब क्या करे तो करे क्या बेली। तो जो ये स्टोरी मिल रही है ना कि बेली ये ऑड्स को कैसे डिफीट करके अपनी चैंपियनशिप तक जाएगी, और फाइनली इयो स्काई और डैमेज कंट्रोल कोलैप्स होगा, ऑब्वियसली यहाँ नयोमी, जेड कारगिल, बियांका जैसे नाम फेंके जा रहे हैं जो इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस पूरी स्टोरी लाइन को। तो जैसा कि रोहित ने कहा, जितना अभी तक मिल रहा है, अगर जितना इसको क्रेडिट मिल रहा है, जितना हम देख रहे हैं इसको डीपली, उससे कुछ ज़्यादा प्लान किया हुआ है यहाँ पे WWE ने, तो आई थिंक वो शॉक मोमेंट क्रिएट होगी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, और ऑब्वियसली वो मोमेंट आई थिंक रोहित पर्सनली भी मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ इस चीज़ की कि बेली पे कोई चैंपियनशिप आए, क्योंकि ट्रिपल एच की वन ऑफ द फेवरेट, या फिर हम कह सकते हैं उनको बहुत मौका देते हैं ट्रिपल एच, लेकिन वो चैंपियनशिप नहीं दी अभी तक।
शायद ये वाला सपना आयुष के साथ साथ बहुत सारे लोगों का पूरा होगा, क्योंकि बेली फुली डिजर्विंग है यार, यहाँ पे तो कुछ ले ही नहीं सकते बेली से कि अच्छा ऐसा ही होना चाहिए था, वैसे नहीं, बहुत टाइम से ये उसका आई के पास चैंपियनशिप, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं हो रहा, तो कुछ फ्रेश स्टार्ट देने के लिए मुझे लगता है ये चीज़ WWE को करनी चाहिए, बाकी तो रेसलमेनिया वाले दिन ही हमको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और इसी के साथ हम बढ़ते अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जिसमें अभी टीम्स तो आना आयुष बाकी है, लेकिन 6-pack टैग टीम लैडर मैच WWE करने वाली है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। एक सिंपल सी चीज़, मैं ज़्यादा टीमों के बारे में ये होगा वो होगा तो डिस्कस ही नहीं करूँगा, एक सवाल पूछूंगा, क्या ऑसम ट्रुथ यहाँ पे आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो क्या हर ट्रुथ को एक अपना वर्ल्ड टाइटल जीतने का मौका मिलेगा ट्रस्ट मिलने, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई टाइटल जीता भी नहीं, और क्या ये मैटर भी करता है जितना इसको बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं?
भाई हर ट्रुथ आ तो जाएंगे, पर उनको बताएगा कौन कि ये मैच जीतना कैसे है, कि इस पे लैडर पे भी चढ़ना पड़ेगा, तो वो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हर ट्रुथ समझेंगे क्या इस मैच की स्टिपुलेशन को, कहीं पता चले रिंग के नीचे चले गए या फिर कुछ और टेबल निकाल के शुरू कर दिया काम। बट आर्ट्रूथ आई डोंट नो मैन, मतलब हम प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे फिर से, और मैंने कुछ सोचा भी नहीं है बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि टीम्स क्या है इसके अंदर, लेकिन आई डोंट थिंक ऑसम ट्रूथ को टाइटल देना कोई लॉजिक है, आई थिंक वो एक गिमिक है, और अगर WWE करना चाहती है तो ठीक है, बट कितने दिन रेसलमेनिया के बाद उनको हम एज ए चैंपियन देख लेंगे भाई, कब तक ही देख लेंगे? अगर उसको जोक बनाना है, अगर उसको एक कॉमेडी एक्ट बनाना है, तो मेज और आर्ट्रूथ को टाइटल दिए जा सकते हैं, बट जिस पोजीशन पे अभी टैग टीम डिवीजन है, जिस पोजीशन पे मैच जाने वाला है, आई डोंट थिंक यहाँ कॉमेडी की कोई जगह है रोहित। DIY, क्रीड ब्रदर्स, मतलब और बहुत सारी टैग टीम्स इसके अंदर आने वाली हैं, हमने देखा कैसे न्यू कैच रिपब्लिक है, तो आई डोंट थिंक कि क्यों भाई, क्यों मतलब यहाँ पे कॉमेडी लानी है। और इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा फिर से, सरप्राइज शॉक्स हम काफ़ी सारे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, पहले भी हमने रेसलमेनिया में देखा था और इसकी पॉसिबिलिटी आई डोंट नो कितनी है, कुछ मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी, लेकिन रोहित कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा, क्या हार्डी बॉयज अवेलेबल है दोबारा फॉर WWE?
अगेन रेसलमेनिया है तो हम वही मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल वही हो जाएगा, मतलब WWE की हिस्ट्री की लाउडेस्ट पॉप्स में से अगर देखें तो वो हार्डी बॉयज वाला मूवमेंट था, उसको WWE क्या रिक्रिएट करेगी? अगर एक स्पॉट खुला रहता है टीम का तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर हो सकता है, बट AEW वाली चीज़ डील वगैरह क्या चल रही है वो सारी चीज़ें पहले ज़्यादा मैटर करेंगी, बट मूवमेंट की बात है तो मैं जैसा आयुष ने यहाँ पर बोला हार्डी बॉयज उसको एक मूवमेंट लग रहा है, पता नहीं वो होगा या नहीं, लेकिन मूवमेंट की बात हो रही है तो उस वजह से आयुष में कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता हूँ कि DIY या फिर क्रीड ब्रोस इन सबको फिर भी साइड में रखा जा सकता है, ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि रेसलमेनिया मूवमेंट की बात हो रही है तो शायद थोड़ा सा सैक्रिफाइस हो जाएगा यहाँ पे। देखो टैग टीम चैंपियनशिप जीतना आर्टोज और मिस का इस पॉइंट में मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि कोई डिवीजन को हेल्प करने वाला है उनके पर्सनल मूवमेंट या फिर रेसलमेनिया मूवमेंट के अलावा, तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ठीक है चलो आगे देखेंगे जब जैसा होगा। और
लेकिन जहाँ तक की मतलब बात है ना इस मैच की जो डिलीवर होने वाला है, हमने सारी बातें तो कर ली पर वो चीज़ मेन छोड़ दी, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी भाई कौन जीत रहा है, इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा कौन टाइटल लेके जा रहा है, चलो छोड़ दो उसको साइड में फेंको, लेकिन रोहित क्या होने वाला है यहाँ पे? लास्ट ईयर का मैच हमको याद है क्या हुआ सर वो शोकेस वाले मैच में, और वहाँ तो कोई लैडर वैडर वाला सीन भी नहीं था, यहाँ पे टोटल 12 लोग हैं, लैडर्स हैं, कोई तो टूटने वाला है यहाँ पर गंदे तरीके से और मज़ा आएगा वो देखने में, तो एक्सपेक्ट करो यहाँ पे कलेश होगा। लेकिन अगला जो मैच है इसमें कॉमेडी होगी और इसमें डेफिनेटली कलेश भी होगा और इसमें RKO भी लगेगी, और मैं चाहता हूँ रोहित ही बात करे भाई क्योंकि रैंडी ऑर्टन जो इन्वॉल्व है।
सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा, RKO नहीं लगेंगे, RKOs लगेंगे, क्योंकि दो सुपरस्टार्स हैं यहाँ पे उनके अगेंस्ट में, और यार ये मैं कोई रैंडी ऑर्टन फेवरेट है इस वजह से नहीं बोल रहा, रैंडी ऑर्टन को भाई रेसलमेनिया में जीतना चाहिए, मैं तो सिर्फ ये स्टेटमेंट दूंगा अपनी, मस्त मस्त RKO दिखाओ मुझे, लोगन पॉल US चैंपियन है अच्छी बात है, लेकिन मैं चलो थोड़ा सा बायस हो गया यहाँ पे, रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में ये मूवमेंट मिल गया तो पता नहीं मुझे अच्छा सा लगेगा बहुत।
भाई देखो रोहित ने शुरू करा बोल कि रैंडी ऑर्टन मेरे फेवरेट हैं, पर इस वजह से मैं ऐसे ऐसे नहीं, और आते आते बोला कि मैं बायस्ड हो गया हूँ और प्रिडिक्शंस भी नहीं करनी थी पर इस मैच में बोल दिया कि रैंडी ऑर्टन ही जीतना चाहिए, तो आपको सबको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि यहाँ पे मेरा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन I think I have to agree और रैंडी ऑर्टन जिस तरीके से इस समय है WWE में, बहुत लोग तो चाह रहे थे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए कम्पीट करेंगे, इस टाइम वो नहीं हो रहा, लोगन पॉल आई थिंक समय आ चुका है अब टाइटल हारने का, आई डोंट नो मैन, इस पूरी चीज़ में हमने एक चीज़ तो मिस ही कर दी रोहित की रेसलमेनिया के हर मैच में बीचों बीच प्राइम की बोतल होगी भाई, अब मैं दोबारा सोच रहा हूँ मुझे इतना अजीब लग रहा है, और उसको यूज़ करा जाएगा और उसी प्राइम की बोतल के ऊपर ही RKO पड़ेगी और पिन होंगे लोगन पॉल, तो वो कितनी वायरल मोमेंट बनेगी कि लोगन पॉल अपना टाइटल हार गए उस मैच में जब पहली बार उनके मैच में प्राइम स्पॉन्सर कर रहा था, तो आई थिंक इस पूरे को एक मार्केटिंग गिमिक बनाया जाएगा, और बेचारे केविन ओवेंस जो क्या से क्या हो गए देखते देखते, बट मैं क्या ही बोलूँ उनकी जगह नहीं है यहाँ पे, गुड लक टू केविन ओवेंस। लेकिन अगले मैच की हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे तो रैंडी ऑर्टन ही छाएंगे, रिया रिपली वर्सेस बैकी लिंच, फर्स्ट टाइम एवर हो रहा है इस चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में, NXT में लास्ट इनका मैच हुआ था रोहित, क्या ये वो उस लेवल का मैच है जैसे शार्लेट वर्सेस रिया था? मेरी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है कि ये उस लेवल तक जा सकता है,
मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि पता नहीं ये मैच है तो इतना बड़ा फर्स्ट टाइम एवर है, लेकिन इसको देख के वैसी फील क्यों नहीं आ रही, और मैं सही बताऊँ ये मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि रिया बेटर है या फिर बैकी बेटर है, मुझे रिया रिपली के सामने जब बैकी लिंच खड़ी होती है ना तो रिया रिपली अलग ही लगती है, ऐसा लगता है कि यार इसे कौन हरा देगा, तो बैकी लिंच पता नहीं वैसे फील क्यों नहीं दे रही। अगर मैं बोलूँ तो जैसे ही बैकी लिंच द मैन के कैरेक्टर से थोड़ा सा पहले थी, जैसे जब वो पॉपुलर हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उनका थोड़ा बहुत जो मसल मास है वो ज़्यादा था, अभी मैं बहुत अजीब चीज़ के बाद बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लग रही बैकी लिंच जब से वो थोड़ी सी फैट लॉस के ऊपर आई है, इसीलिए मेरे को लग रहा है यार बैकी लिंच लगती नहीं है कभी भी ऐसा, जैसे नाया जैक्स के साथ भी लड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था बस नाया जैक्स मौका दे रही है बैकी लिंच को, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, पता नहीं कैसी प्रॉब्लम मैंने उठाई, लेकिन जो जनरली मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो मेरे को
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पॉडकास्ट इंग्लिश में होता तो आज विवाद हो जाता भाई, क्योंकि बातें हैं।
नहीं 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 आयुष, इसको मैं जैसे मैं इसका थोड़ा क्लियर और कर देता हूँ। ब्रॉन स्ट्रोमैन के केस में भी मैं यही बोलता हूँ, ब्रॉन स्ट्रोमैन इतने रिप्ड हो गए हैं, इतने जैक्ड हो गए हैं, इतनी डेफिनेशन लेके आ गए हैं कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन वाली फील नहीं आ रही। तो वही चीज़ बैकी लिंच के साथ भी है, वो कई बार ऐसे बैकी लिंच कमजोर सी लगती है मुझे रिंग में। भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ
भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है सेथ रॉलिंस बैकी लिंच को, भाई एज अ कपल इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज इनकी रेसलमेनिया की डायरेक्शन अच्छी नहीं लग रही। और आई डोंट केयर कि बैकी लिंच मैन लग रही हैं, वुमेन लग रही हैं, कि फैट लॉस है या फिर वेट कम ज़्यादा है, आई डोंट केयर। अगर बैकी लिंच मोटी होके भी आएंगी तो रिया रिप्ली के सामने अच्छी नहीं लगेंगी, और इससे ज़्यादा क्लियरली मैं इसको बोल नहीं सकता। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू से इट। इसका बस मतलब ये है कि रिया रिप्ली है भाई। अगर पूरी डिवीजन को मैं रैंकिंग करनी स्टार्ट कर भी दूँ, कुछ भी कर दूँ, कोई भी रीज़न ले आऊँ, कोई नहीं है पूरे रोस्टर में अभी जो रिया रिप्ली को हरा सकता है, एंड दैट शुड स्टे द सेम जब तक कोई रेलिवेंट नहीं आ जाता जो रिया रिप्ली को हरा।
क्या रिया रिप्ली के बारे में इससे आगे बढ़ वाला स्टेटमेंट सही है कि रिया अगर 100 में से देखें तो रिया रिप्ली बिल्कुल 100 पर बैठी हुई है, और बाकी विमेंस डिवीजन में जो लॉकर रूम की स्टार्ट ही हो रही है वो कहीं 60-70 के आसपास से हो रही है, इसीलिए चाहे कोई बैकी लिंच मोटा हो गया पतला हो गया फर्क नहीं पड़ेगा
आई थिंक। जबकि शार्लेट फ्लेयर आई डोंट नो कितने बार चैंपियनशिप जीती है, मैं तो गिनता भी नहीं हूँ अब, लेकिन ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। अभी ऑफिशियली आई डोंट थिंक वो पॉइंट तक पहुंची है रिया, बट अगर कुछ टाइम और, ज़्यादा टाइम भी नहीं, आई थिंक अगर इस साल में अच्छे और डोमिनेंट तरीके से रिया ऐसी चैंपियन रहती हैं, फॉर मी आई थिंक रिया रिप्ली इज द ग्रेटेस्ट वुमेन रेस्लर ऑफ ऑल टाइम। और मैं यहाँ पे कोई ट्रिश लेटा को या फिर वो सब ऐसा नहीं, मैं भूल गया हूँ कि वो सब भी कभी थे, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशन लाए, एवोल्यूशन लाए, लेकिन एक ऐसी स्टेज पे जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा और वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा, रिया रिप्ली वो करेंगे। पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब वो इस लेवल तक चली गई हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, 100 पे और बाकी सब आई डोंट नो कहाँ हैं, 60s पे हैं, 70s पे हैं। तो WWE के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि किसको बिल्ड कर सकते हैं एज ए जेन्युइन कंटेंडर। लेकिन रोहित, दो मैच जो बचे हैं, ये है पूरी रेसलमेनिया की हाइप, ये है वो बात जो रेसलमेनिया में अंदर घुसते हुए जिसके बारे में बोला जा रहा है, और यही वो बात होगी जिसके रेसलमेनिया के बाहर आते हुए बात होगी आफ्टर नाइट वन एंड आफ्टर नाइट टू। नाइट वन का जो मैच है वो है रॉक एंड रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस। अगर ब्लड लाइन जीतती है नाइट टू मैच बिकम्स ब्लड लाइन रूल्स, अगर नहीं जीतती है तो कोडी वर्सेज रोमन इज फेयर वन ऑन वन। अब इस टैग टीम मैच के बारे में हम बहुत डिटेल में गाइस बात कर चुके हैं लास्ट पॉडकास्ट में, आप लोगों को जाके वो चेकआउट करना चाहिए बहुत डिटेल में। लेकिन रोहित, फिर भी नाइट वन का ये मेन इवेंट है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या इस समय WWE के कंधों पे प्रेशर है एंड डिलीवर करना?
अभी तो जैसे हम इस मैच की डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोनों मैचेस की डिस्कशन ही साथ में करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा और समझाने के लिए, बात करने के लिए अच्छा रहेगा। और जैसे आयुष ने बोला, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि रेसलमेनिया को 40 को जब याद करेंगे तो शायद जे और जिमी उसो के मैच से कर सकते हैं, क्योंकि वो डिलीवर इतना अच्छा करेंगे। लेकिन जब भी पोस्टर की याद आएगी तो हमेशा कोडी के सामने रॉक की फोटो और रोमन रेंस के सामने सेथ रॉलिंस की फोटो, वो टैग टीम मैच, फिर सेकंड नाइट में मेन इवेंट, उसकी बात की जाएगी। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत बात करी है पहले, लेकिन ये ही रॉक की अपीयरेंस रेसलमेनिया को पूरा स्पेशल और अलग बना रही है। टैग टीम ये स्टोरी भी WWE जिस तरीके से बना दी ना, पहले कई बार ऐसा हो सकता था देख के लगता कि यार रॉक और रॉक की वजह से टैग टीम मैच करना पड़ रहा है इनको, वरना तो ये करते भी नहीं, लेकिन उसको स्टोरी में जैसे उन्होंने डाल दिया कि नाइट वन में ये होगा तो फिर नाइट टू में ब्लड लाइन रूल्स हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम कमेंट्री कर लेंगे, हम गेस्ट बन जाएंगे, हम रेफरी बन जाएंगे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इन्फोर्सर की तरह कोई भी एक्ट कर सकता है। तो वो वाला जो एंगल है WWE ने बहुत अच्छा बना दिया। और जो नाइट टू की ओरिजिनल स्टोरी थी कि कोडी रोड्स भी अगर हारे तो शायद रीजन फिर से ब्लड लाइन होगा, उसको नाइट वन में वो इम्प्लीकेशंस लगा के जो WWE ने काम किया वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और रॉक की तो भाई जितनी तारीफ है वो उतनी कम है।
आई थिंक बिल्कुल ठीक बात है, इस मैच की हाइप इतनी ज़्यादा है, और जब मैच, मैं तो वो मोमेंट सोच रहा हूँ भाई जब एंट्रेंसेस होंगी। आई थिंक टोटल रोहित, मैं ये प्रिडिक्शन तो हम कर सकते हैं कि इस मैच में नाइट वन के मेन इवेंट में टोटल चारों एंट्रेंस कितने मिनट के होंगे मिला के?
सबसे पहले तो ऑब्वियसली रोमन रेंज की 5-6 मिनट, रॉक की उससे डबल तो यहाँ पे मैच, ये समझ लो मैच टाइम से ज़्यादा हो सकता है। और आयुष ये भी देखना कितना ऑकवर्ड होगा कि रोमन रेंस और रॉक मैच नहीं, रोमन रेंस किसी टैग टीम मैच में और वो फर्स्ट नहीं जा रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले रॉक अपना, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपना वो हॉट टैग वाला मोमेंट बनाना होगा, हील टीम होती, और आयुष हील टीम यूजुअली उल्टी साइड खड़ी रहती है, क्या इस बार उल्टा होगा क्योंकि स्क्रीन पर रॉक और रोमन रेंस को ज़्यादा दिखाना होगा?
मैं देखो ये बात बोलना चाहता हूँ और हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भूल गए हैं यहाँ पे, भूले तो नहीं है मतलब पता है लेकिन डिस्कस नहीं किया, रेसलमेनिया के अराउंड जो कि रेसलमेनिया को स्पेशल बनाता है पूरे साल में ऐसा एक बार होता है, वो है रेसलमेनिया का सेट और रेसलमेनिया की एंट्रेंसेस। तो आई थिंक स्पेशली जितना डेप्थ यहाँ पे स्टोरी में दी जा रही है कि रॉक की, तो भाई स्मैकडाउन पे ही एंट्रेंस चेंज है, म्यूजिक चेंज है और उनके जैसे हम देख रहे हैं जैकेट्स वो पहन के आते हैं, तो रेसलमेनिया में एक्चुअली में जो एक्चुअल एंट्रेंस है भाई उसमें क्या यहाँ पे प्लान करेंगे, कुछ अलग होगा बहुत। तो आई थिंक कि उस चीज़ को दिखाने के लिए कि कोई डेविल उतर रहा है भाई, फाइनल बॉस एम ही थोड़ी है, मैं इसके बारे में बोलना चाहता रोहित कि फाइनल बॉस क्या है भाई, फाइनल बॉस क्या है, फाइनल बॉस की एंट्रेंस भी तो ऐसी होगी ना कि आखिरी बार ये बंदा आ रहा है किसी तरीके से उसको दिखाने के लिए।
फाइनल बॉस क्या है, सिंपल है, फाइनल बॉस इज द रॉक, अपने आप को वो बोल भी रहे हैं, उस चीज़ को स्टोरी में भी यूज़ कर रहे हैं। अभी रेसलमेनिया 40 के बाद भी देखो ये फाइनल बॉस वाली टर्म का कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन इन जनरल इस रेसलमेनिया की जब बात हो रही है तो एंट्रेंसेस स्पेशल होंगी। मैंने तो बोला ही भाई, ये लोगों ने मेरे को बोलना शुरू कर दिया कि मतलब थोड़ा हेजिटेट करो बोलने में, जो मैंने अपनी वीडियो में बोल दिया था कि रॉक जब अपनी चंडी में आएगा तो सोचो कितना स्पेशल लगेगा, इतने सालों बाद अपनी एंट्रेंस कर रहा है वैसे वो, क्योंकि वो अपने
आई थिंक मैं तो ये भी सोच रहा हूँ रोहित कि अब ऑब्वियसली यूके अनाउंस हो चुका है, बैठक भी हो रहा है, इवेंट क्या मतलब माहौल बनने वाला भाई उस नाइट वन के, आई विश मैं होता वहाँ सून, लेकिन लेकिन आई डोंट नो मैन कि क्या लोग एनर्जी लेके आएंगे भाई, मज़ा आ जाएगा इस मैच के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेसलमेनिया से पहले दोबारा आई थिंक डेफिनेटली इस मैच के बारे में बात करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इवेंचुअली लीड करेगा। इसकी प्रेडिक्शन पे हम एक बार अग्री कर लेते हैं, चाहे कैसे भी हो रोहित हम उस पर नहीं आ रहे, लेकिन क्या हम इस पर अग्री करते हैं कि रोमन एंड रॉक समहाउ वी डोंट नो हाउ कि वो जीतेंगे इस मैच को?
यार एक सिंपल सी चीज़ है, प्रेडिक्शन काइंड ऑफ प्रेडिक्शन ही है, लेकिन एक एक ये तरीका है स्टोरी को देखने का कि जब रोमन और रॉक पहले नाइट को जीतेंगे तभी दूसरी नाइट स्पेशल होगी, क्योंकि तभी ब्लड लाइन रूल्स होगा, अगर ब्लड लाइन रूल्स हुआ ही नहीं तो वो कोडी रोड्स का सारे ऑड्स को बीट करके रोमन रेंस को हराना वो इतना स्पेशल फील नहीं होगा, अगर कोडी रोड्स जीत रहे हैं तो वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये जो अट्रैक्शन है नाइट वन और नाइट टू ये ही है पूरी रेसलमेनिया की सबसे बड़ी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, और उससे जो पॉइंट है वो बनता है अब क्या ये ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया है, सच में क्या ये ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया है, जब हमारे पास पुरानी बहुत सारी रेसलमेनिया के बड़े बड़े शोज और मेन इवेंट हैं।
भाई देखो ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया तब होगी अगर स्टोरी ख़त्म होगी, अभी तो मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही है कि क्या पता अगर नाइट वन पे जिमी ने जे को हरा दिया तो नाइट टू के इस ब्लड लाइन रूल्स मैच में जे कम्स बैक होम, जे बिकम्स अ हील एंड जे joins द ब्लड लाइन। और रोहित ये क्वेश्चन आज मुझे इंस्टाग्राम के मेरे Q&A पे आया और आई डोंट थिंक इसके बारे में बात हुई है कहीं पे या लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि रॉक विल टर्न ऑन रोमन, लेकिन क्वेश्चन ये था वॉट इफ रोमन टर्न ऑन द रॉक और वो रीफॉर्म कर लें अपनी ब्लड लाइन को और इस फाइनल बॉस को निकाल दें अपनी ब्लड लाइन से बाहर एंड ही रिटेन्स।
ये सारी बातें जो आयुष ने बोली है, देखो ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया जब तक रेसलमेनिया हो नहीं जाती वो कुछ कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्लेटफॉर्म बन जरूर रहा है, क्योंकि अगर इसमें रॉक की अपीयरेंस होती ही नहीं, रोमन और रॉक साथ में टैग टीम में होते ही नहीं, जिमी और जे उसे जैसा मैच नहीं होता तो हम कहते भाई इसका तो प्लेटफॉर्म ही सेट नहीं है, तो इसमें क्या बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी। लेकिन अगर कुछ शॉकर्स आ गए, पूरे कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे कुछ शॉकर्स आ गए, कुछ ऐसा सरप्राइज हो गया कि यार ये WWE ने क्या कर दिया, कुछ रेसलमेनिया के मूवमेंट हो गए, परफेक्ट तरीके से स्टोरी फिनिश हुई या फिर एंड हुई, मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा स्टोरी फिनिश होना और एंड होने में भी डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे कुछ अलग अलग और नज़रिए हैं स्टोरी लाइन को देखने में कि रोमन टर्न कर गए, तो पोटेंशियल इसमें ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ जो खल रही है वो ऐसा लगता है कि ज़्यादा फोकस सिर्फ ये रॉक वाली चीज़ के ऊपर, इस ड्रामा के ऊपर, कोडी सेथ वाले ड्रामा के ऊपर हो गया, थोड़ा सा अगर वो दूसरी जगह भी फैंस शिफ्ट करें तो शायद भाई ये ऐसी रेसलमेनिया होगी जो WWE के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड यस ग्रेटेस्ट भी है।
भाई देखो प्रॉफिट तो गया भाड़ में, आई डोंट केयर, वो तो होना ही है बिकॉज जब से WWE ये ब्रांड ये सब लेके आ रहे हैं जो कि बिजनेस के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन एज अ फैन जब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऑब्वियसली मैं और रोहित आपको यहाँ पे आके ट्रिपल एच की तरह चश्मा नीचे करके अपनी नाक के पास लगा के ये नहीं बोलने वाले कि इतने लोग आए थे रेसलमेनिया देखने इसलिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गई, भाई मैं ऐसा हम क्यों बोलेंगे, तो जो शो हमें देखने को मिलेगा उसके बाद हम बता सकते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जब रेसलमेनिया की बात हम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, हम रेसलमेनिया 17, 28, 30 और बहुत सारी क्लासिक रेसलमेनियाज हैं जो कि अभी एग्जिस्ट करती हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर की रेसलमेनिया भी, तो आई थिंक कि अभी रुकना पड़ेगा रोहित, लेकिन ग्रेटेस्ट एवर बिल्डअप आई डोंट थिंक सो, और ये ऑनेस्ट है भाई। ठीक है, दोनों मेन इवेंट जो हैं वो ग्रेटेस्ट एवर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हैं भी, लेकिन ग्रेटेस्ट एवर रेसलमेनिया जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब ये कि बाकी सारी चीज़ें भी जो शो पे हैं, कैपेबल डेफिनेटली रोस्टर है एक डिलीवर करने में द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और वो हो भी सकता है, आई होप कि हो, लेकिन उसका जवाब तो भाई शो के बाद ही मिलेगा
मेरे ख्याल से। मेरे को अगर दोबारा से यहाँ पे कुछ बोलना हो तो बस आयुष वाली जो पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग है थोड़ा सा पीछे करके सुन लेना एक मिनट से, क्योंकि मेरे भी एग्जैक्ट वही सेम वर्ड्स, वही सेम बातें, वही सेम थिंकिंग, वही सेम लॉजिक है कि हम ना इसको पैसे की तरफ से देख रहे हैं, ना हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ हुई वैसे, यार एक ही चीज़ के ऊपर सारा फोकस बना दिया। कैपेबिलिटी है एंड क्या ये ग्रेटेस्ट है, रेसलमेनिया 28 को अगर हम ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं या एंड ऑफ एन एरा को बोल रहे हैं, तो वो जब हो गया उसके बाद हमने बोला, तो इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है। बाकी क्या यह होगी या फिर नहीं, वो तो आपको जब रेसलमेनिया के हमारे नाइट वन और नाइट टू के रेटिंग वाले एपिसोड पता चलेंगे तो शायद हम उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। लंबा एपिसोड हो गया लेकिन आई होप आपको सब कुछ ऊपर से लेके नीचे दाएं बाएं सब कुछ पता चला होगा रेसलमेनिया के बारे में। ऐसे इन डेप्थ और एपिसोड्स के लिए आप फॉलो जरूर कर लेना, रेट कर लेना। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी असली वाला पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।